आज का हमारा मजमून है, आपको कौन सी चीज रोकती है, आपको कौन सी चीज रोकती है, व्हाट्स होल्डिंग यू बैक, आपको कौन सी चीज रोकती है। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकस्सा उसका 10वां बाब 17वीं से 22वीं आयत में एक मालदार आदमी की कहानी जो है वो बयान की गई है। और ये जो मालदार आदमी है, इसकी आप खसूसियात पर निगाह कीजिएगा, और जब भी मजबा से कोई बात कही जाए, बयान की जाए, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं और करता रहूंगा कि आप उससे मुकम्मल तौर पर रिलेट कीजिए, अपने आप को उसी स्टोरी में जो है, जिस तरह हम ड्रामास को देखते हुए, फिल्म्स को देखते हुए बाज़ुकात इतना खो जाते हैं कि हम अपने आप को रिलेट करते हैं, अपने आप को उसी में देखना शुरू कर देते हैं। मगर जब बात किताबे मुकद्दस की हो, जब बात किताबे मुकद्दस की सच्चाइयों की हो, तो फिर इसे मुकम्मल तौर पर इसके आईना में अपने आप को देखें और रिलेट करें कि ये जो स्टोरी है, इसे मैं एब्जॉर्ब कर पा रहा हूं, इसे ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, इसे अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। आपको कौन सी चीज रोकती है? मेरी और आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये हमारी आने वाली कई एक मनाजिल के रास्ता में रुकावट बन जाती हैं। सुनिएगा ध्यान, बाज़ुकात हम अपनी लाइफ में कई एक चीजों को इतना प्यार करते हैं, इतना कह लीजिए उससे जुड़े होते हैं कि हमारी आने वाली कई एक मनाजिल जो हैं, शायद वो जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उससे बहुत बेहतर हो जो आने वाली है, मगर उस चीज की मोहब्बत में हम आने वाले फ्यूचर को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। और यहां पर जो कहानी है अमीर आदमी की, इस अमीर आदमी का रवैया, इसने खुदावंद यीशु मसीह की बाबत सुना हुआ है, उसने यीशु मसीह के बाबत जो है वो मुतालिया किया हुआ है, और वो जानता है कि ये मौजजात कर रहा है, इसके पास खुदा की बादशाही की कुंजियां हैं, ये जो है वो खुदा की बादशाही में दाखले के लिए मदद कर सकता है, ये बड़े बड़े काम कर सकता है, ये बेहतर रानुमा है, ये बेहतर सिखाने वाला है। और इसी सबब से किताब मुकदस कहती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे भीड़ में, तो ये दौड़ कर उसके पीछे हो गया। यानी उसके दौड़ने वाली जो नेचर है, यह इस बात को जाहिर कर रही है कि जो उसकी तलब है ना, उसमें किस बात की, खुदा की बादशाही की विरासत की या उसे ओन करने की, वो जोर मार रही थी, वो चाहता है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए। और इसी सबब से उसने जाकर दौड़कर फिर उसके सामने घुटने टेक कर अपनी डिमांड रखी है, अपनी रिक्वेस्ट रखी है, क्या है मालिक, मैं इसे पढ़ता हूं, आप सुनिए कि किस तरह से उसने इस जुमले को बयान किया। लिखा है, घुटने टेक कर उसने पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि खुदा की बादशाही का वारिस बन जाऊं। यानी ये जुस्तजू जो है कोई बुरी नहीं है, इंतहाई बेहतर चीज की जुस्तजू कर रहा है, यानी इंतहाई अच्छी चीज की ख्वाहिश कर रहा है। और खुदा की बात यही कि ख्वाहिश जो है वो मुझे और आपको होनी चाहिए, मुझे और आपको होनी चाहिए, और इसके पास ये ख्वाहिश मौजूद है। ये दौड़ कर गया है, इसने घुटने टेक दिए, इसने सुना है यीशु मसीह के ताल्लुक से। मैं और आप बाज़ुकात दौड़ कर जाते हैं चीजों को पाने के लिए, हमें जुस्तजू भी होती है, हमने उन चीजों का मुतालिया भी किया होता है। और यहां यानी झुकने का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये इस बात की दलील है कि मैं और आप बाज़ुकात नई आने वाली मनाजिल को पाने के लिए, फ्यूचर की बरकात को, ब्लेसिंग्स को, जिसका मैंने और आपने सुना हुआ है, उसे पाने के लिए खुदा की हुजूरी में झुकने के लिए भी तैयार है और झुकते हैं, और फिर हम खुदा की हुजूरी में मांगते भी हैं, चिल्लाते हैं अपनी सप्लिकेशंस को, अपनी डिमांड्स को, अपनी डिजायर्स को खुदावंद की हुजूरी में पेश कर देते हैं और कहते हैं कि ए नेक उस्ताद, ए रब्बुल अफाज, मैं क्या करूं कि खुदा की बात से एक वारिस बनूं, मैं क्या करूं कि इस बरकत को पालूं, मैं क्या करूं कि इस शख्स को पालूं, मैं क्या करूं कि उस मंजिल को पालूं जिसकी ख्वाहिश मुझ में मौजे मार रही है और इस शख्स की ख्वाहिश इसे लेकर आई है। और ये अमीर आदमी है, इसे किसी चीज की कमी नहीं है, ही डजंट लैक एनीथिंग, मगर अच्छी चीज की ख्वाहिश कर रहा है। यानी ये रवैया ठीक है, ये रवैया दुरुस्त है। बाज़ुकात हमारे ये रवैये जो हैं सतही तौर पर दुरुस्त दिखाई देते हैं, हम दौड़ भाग करते हैं उसे पाने की ख्वाहिश भी कर रहे होते हैं, और यही कुछ ये शख्स कर रहा है। और ये कहना कि मैं क्या करूं, ये दुआएं उसकी जो हम दुआएं करते हैं, दुआया प्याले खुदावंद की हुजूरी में उठाते हैं, और बाज़ुकात तो हमें आवाज आती है, मज़बा से आती है, ख्वाब और रोया में खुदा कलाम करके बताता है, खुदा विस्पर करके बताता है कि तुझे क्या करना चाहिए, सिखाता है। और यहां पर जब आप इस शख्स से मुकम्मल तौर पर रिलेट करेंगे और करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम अपनी दुरुस्ती कर सकते हैं, वरना नहीं। जब उसने यह ख्वाहिश पेश की कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूंगा खुदा की बादशाही का, आसमान की बादशाही का वारिस बन जाऊं, रुपया पैसा उसके पास है, इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ उसके पास मौजूद है, मगर उसे मालूम पड़ रहा है कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी है। क्यों? क्योंकि उसने सुना है, यीशु मसीह ने अपनी मनादी का आगाज ही ऐसे किया है, क्या तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यानी उसने सुना है कि यीशु मसीह की मनादी क्या है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। उसने देखा है कि रसूल मनादी कर रहे हैं, उसने देखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी इसी चीज की मनादी कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज है जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी और वो खुदा की बादशाही थी। यानी सब कुछ होने के बावजूद भी उसमें तलब थी कि वो खुदा की बादशाही को ओन करे, उसका वारिस बन जाए। जब उसने खुदा यीशु मसीह के हुजूर में अपनी दरख्वास्त पेश की तो यीशु मसीह ने मुकम्मल तौर पर उसे स्कैन किया, ही स्कैन्ड हिम फ्रॉम टॉप टू टो। और यीशु मसीह का जवाब क्या था, यीशु ने उससे कहा मैं तू मुझे नेक क्यों कहता है, उसने अपनी बात को जारी रखा, उसके बाद कोई नेक नहीं है मगर एक यानी खुदा। अब यहां पर यीशु मसीह ने जब उसे स्कैन कर लिया, आपकी तवज्जो चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु मसीह ने उसे स्कैन कर लिया तो क्यों, क्योंकि उसकी आरजू है कि वो खुदा की बादशाही में जाए, उसे ओन करे, तो यीशु मसीह ने फौरी तौर पर उसे क्या किया, स्कैन किया, उसकी इमेजिंग की है, उसे टॉप टू टू देखा है, उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसके दिल में क्या चल रहा था, उसने मुकम्मल तौर पर स्कैन कर लिया। और करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने आउट ऑफ नोवेयर यह कहा है कि तू मुझे नेक कहता है, कोई भी नहीं है, सिर्फ एक है यानी खुदा। अब दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह जिसकी जुबान में छल नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, आप ध्यान से सुनिएगा, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, यानी वो नेक था, वो नेक था, और मेरी और आपकी तरह हर एक बात में आजमाया गया तो भी बेगुनाह निकला, आमीन, वो बेगुनाह निकला यानी वो नेक था। जब उसने ये कहा ना कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह से इंट्रीग कर रहे थे, उसे हला रहे थे, उसे झंझोर रहे थे कि वो अपने आप को चेक करे, क्योंकि मैं इसे चेक कर चुका हूं, वो उसे स्कैन कर चुका था, वो उसे पढ़ चुका था, वो उसे रीड कर चुका था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दिलों के हाल जानता है। आगे लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, तू हुक्मों को तो जानता है ना, आई एम गोना गिव यू अ वे। अब खुदावंद यीशु मसीह एक रास्ता बना रहे, तू हुक्मों को तो जानता है, क्या ना कर, चोरी ना कर, आमीन, जिना ना कर, खून ना करना, झूठी गवाही ना देना। यानी ये कहने का मतलब है, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं ये जो 10 हुक्म है ना तेरे पास भाई मौजूद है, तू उन्हें फॉलो कर, यानी अगर तू इन्हें टोटली फॉलो करेगा तो खुदा की बात ये में दाखिल हो सकता है। अपने मां बाप की इज्जत कर। उसने उसे कहा है, उस्ताद मैंने लड़कपन पर से इन सब पर अमल किया है। अब वो शख्स अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ये कहने के बावजूद भी कोई नेक नहीं है, यीशु मसीह को ये जवाब देके कि मैं तो इन सब पर अमल करता हूं अपने लड़कपन, वो अपनी पाकीजगी, अपनी नेकी, अपनी रास्तबाजी का झूठा इकरार कर रहा था। यानी कहने का मतलब यह है कि वो ये जानता ही नहीं है कि यीशु मसीह ने उससे क्या कहा है, कोई नेक नहीं है। मगर वो जब ये कह रहा था कि देख मैं तो इन तमाम तर बातों पर अमल करता हूं, यानी वो 10 कमांडमेंट्स हैं उन्हें वो मुकम्मल तौर पर ये पेश कर रहा है, यीशु मसीह को बता रहा है मैं तो इन सब पर अमल करता हूं। अगर ये अमीर आदमी इन सब पर अमल कर सकता है तो फिर यीशु मसीह को आने का दुनिया में कोई मतलब नहीं था। और यीशु मसीह उसे रिमाइंडर दे रहे हैं कि भैया कोई नेक नहीं है, एंड स्टॉप सेइंग कि तू नेक होगा। यानी उसे पहले से इंट्रीक किया गया, पहले से बताया गया, मगर फिर भी उसने अपनी रास्तबाजी प्रेजेंट की है, फिर भी उसने ऑफर किया यीशु मसीह को, देख मैं तो ये सब करता हूं। मेरे और आपके रवैये भी बाज़ूकात ऐसे ही होते हैं कि हम बाज़ूकात अपनी रास्तबाजियों पर तकिया करते हैं, और वो रास्तबाजियां जो खुदा की निगाह में गंदी धज्जियों की मानी रहे, क्योंकि जब वो स्कैन करेगा, जब वो रीड करेगा तो मैं और आप कम निकलेंगे, जब वो तोलता है तो मैं और आप कम निकल सकते हैं। मगर उसके हजूर में जाकर अपनी रियाजतों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी नेकियों को खुदा की हजूरी में याद लाना, देख मैं बड़ा रास्तबाज हूं, खुदा को मालूम है कि मैं कितना रास्तबाज हूं। जब उसने यीशु मसीह से यह सारा कहा तो लिखा है कि उसने कहा कि देख मैं तो बचपन से ये सब कुछ करता आया हूं। यानी उसका मतलब वो अपनी किसी कोताही का इकरार नहीं कर रहा, देयर इज नो कन्फेशन, कोई कन्फेशन नहीं है। एक ईमानदार जो है वो अपनी सारी दौड़ भाग के बावजूद भी बाज़ूकात जब कन्फेशन करने में नाकाम हो जाए, एतराफ करने में नाकाम हो जाए और खुदा की रास्तबाजी की निस्बत अपनी रास्तबाजी पर ज्यादा तकिया कर रहा हो तो वो खुद को धोखा देता है। यस्सु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया। आप इस जुमले को देखिए, लिखा कि यस्सु ने उस पर निगाह की और उस पर प्यार आया, बेटा मैं तो तुझे स्कैन कर चुका हूं एंड स्टिल तू वहीं पर है, मैंने तुझे यह भी बता दिया कि कोई नेक नहीं है, मगर फिर भी तू अपनी नेकी और रास्तबाजी का ढिंडोरा पीट रहा है। यीशु मसीह को उस पर तरस आया है, उस पर प्यार आया है। यानी इसी बात पर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे डांटा नहीं है, उसे रोका नहीं है, उसे यह नहीं कहा कि तू क्यों झूठ बोल रहा है, तू क्यों अपनी रास्तबाजियों और नेकियों का इकरार कर रहा है, नहीं रोका, बल्कि उसे प्यार आया। प्यार आने का मतलब यह था कि उसे खुदावंद यीशु मसीह एक और अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। ही वॉन्टेड टू गिव हिम एन अदर अपॉर्चुनिटी। और वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? जब उसने अपनी सारी की सारी चीजों का बयान कर दिया तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जब हंस के उस पर उसे प्यार आया तो फिर यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से जी। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर, बेचकर गरीबों को दे दे तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर, क्यों, क्योंकि लिखा है कि वो बड़ा मालदार था। इसी एक जुमला से जब यीशु मसीह ने उस पर निगाह की प्यार से देखा और उसे एक और अपॉर्चुनिटी दी, इसे एक और मौका दिया कि देखता हूं तो इस स्केल पर जो रास्तबाजियां जिनका तू इकरार कर रहा है, क्या अगली जो एक रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करके तू मेरे पीछे आ सकता है या नहीं आ सकता। खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके इम्तहान लेते हैं, खुदावन अपने उन लोगों का इम्तहान लेता है जिनसे वो प्यार करता है और जिन्हें वो बचाना चाहता है اور یہاں اس شخص نے جب اپنی راستبازی کا اقرار کیا ہے, اپنی راستبازی کی بنیاد پر آگے جانا چاہ رہا ہے, تو یسوع مسیح نے کہا کہ لیٹس پروو اٹ, پروو اٹ. اور اسے کہا کہ جا سب کچھ بیچ اور غریبوں کو دے دے. اب اس کا یہ رویہ جو تھا کہ وہ اپنی مال و متاع سے, اپنی جائیداد سے, اپنی دھن دولت سے اتنا جڑا ہوا تھا, اتنا جڑا ہوا تھا کہ اس کا اپنے روپے پیسے کے ساتھ پیار خدا اور خدا کے قوانین سے زیادہ تھا. اور اس بات کے سبب سے اس کا سارا جو کریکٹر تھا وہ کھل کے سامنے آ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا دھن دولت, جو کچھ روپیہ پیسہ اس کے پاس تھا, اور اس سے اس کی محبت جو تھی وہ خدا سے جو محبت ہے, اس محبت کی کمی کا اقرار تھا. بعض اوقات میں اور آپ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں خدا کہہ رہا ہوتا ہے کہ چھوڑ دے, خدا چاہتا ہے کہ چھوڑ دے, بٹ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اگلے آنے والے فیوچر کی بلیسنگز کو رد کر کے اس سے جڑے رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس سے لپٹے رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور اسی سبب سے ہم اس برکت کا جو وہ انکار کرتے ہیں اور اسے کھو دیتے ہیں جو خدا عطا کرنا چاہتا ہے. اس شخص نے جب یہ کہا کہ میں خداوند تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں, میں تیری بادشاہی کا وارث ہونا چاہتا ہوں, خواہش اچھی ہے, جستجو اچھی ہے, مگر جس بات کی کمی ہے اسے پورا نہیں کیا جا رہا, اسے پورا نہیں کیا. جو چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ سٹیپنگ سٹون ہو سکتی ہیں, وہ سٹیپنگ سٹون نہیں ہے, وہ آپ کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. اگر وہ میرے لیے سٹیپنگ سٹون ہو یا مجھے آگے لے کر جانے میں مدد فراہم کریں, تو پھر خداوند یسوع مسیح کو اس شخص سے وہ چیز ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے جنہوں نے دکھ دی رگ تے صحیح پوائنٹ پہ اس نے انگلی رکھی ہے کہ اصل میں یہ چیز جو ہے اسے روکتی ہے, نیکی کرنے سے روک سکتی ہے, کسی سے بھلائی کرنے سے بھی یہ چیز روک سکتی ہے, مجھ سے محبت کرنے سے بھی یہ محبت جو دولت کی ہے یہ روک سکتی ہے. تو دولت کی محبت جو ہے وہ غالب تھی خدا کے ساتھ اس کی محبت پر. بعض اوقات میں اور آپ, جس طرح میں پہلے کہہ رہا ہوں, ہماری لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اتنی محبت ان سے کرتے ہیں کہ خدا پیچھے رہ جاتا ہے, کتنے خدا بہت پیچھے رہ جاتا ہے, اور ہم اپنی اس محبت کو لے کے آگے نکل جاتے ہیں, اپنی ان چیزوں کو لے کر آگے نکل جاتے ہیں, اور وہ بےمانی ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم اسی سے لپٹے رہتے ہیں, ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ عادت ہو سکتی ہے, وہ رویہ ہو سکتا ہے, وہ کوئی کہہ لیجئے مزاج برا ہو سکتا ہے. روپے پیسے کی بات ہی نہیں ہے محض, بلکہ ہر اس چیز کی جو مجھے اور آپ کو آنے والی برکتوں سے روکے. خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اسے چھوڑو, چھوڑو. اور یہ کاسٹ ہے, یہ قیمت ہے آنے والی بڑی برکت کے لیے ادا کرنا چاہتے ہو تو. اور خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کہ اس کا دھن دولت, روپیہ پیسہ جو ہے آنے والی برکت سے کہیں چھوٹا ہے, کہیں چھوٹا ہے. اور میں اور آپ ناکام ہو جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں جب خداوند ہم سے کچھ درکار کرتا ہے, اور میں اور آپ ان ایسے امتحانات میں فیل ہوتے ہیں جب خدا مجھ سے کچھ مانگے. آپ نے کبھی سوچا آپ سے خدا کیا مانگ رہا ہے؟ آپ خدا کی حضوری میں جا کے ہمیشہ مانگتے ہیں, مانگتے ہیں, مانگتے ہیں, بغیر یہ سوچے کہ خدا بھی کچھ مانگتا ہے, خدا بھی کچھ ریکوائر کرتا ہے, وہ بھی کچھ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کے لیے کریں. ہمیں مانگنے کی عادت ہے, ہم جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے ہسبینڈ کے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے کام کاروبار کے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے احباب کے لیے مانگ رہے ہیں, اپنی بیماریوں کے لیے مانگ رہے ہیں. ہمیں مانگنے کی عادت ہے, ہم مانگتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, بغیر یہ سوچے, بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ خدا تو بھی کیا چاہتا ہے, تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور اس شخص نے اس کہہ لیجئے مفلسانہ رویے کا مظاہرہ کیا ہے جو میں اور آپ بعض اوقات خداوند کی حضوری میں جا کر کرتے ہیں.
میں اور آپ خداوند کی, اور مفلسانہ رویہ کیا ہے جو خدا سے مانگ رہا ہے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ مجھے بھی اسے کچھ دینا ہے, مجھے بھی اسے کچھ دینا ہے, اور وہ اسے قیمت ادا کرنی تھی. کس بات کی؟ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی کا انکار کرے, deny yourself, take up your cross and follow me, and follow me, پھر میرے پیچھے آؤ. تو روپے پیسے کی denial, اپنی ذات کی denial کسی چیز کو پانے کے لیے. مگر ہم بہت سی, جب ہماری ڈیمانڈز, ہماری درخواستیں پوری نہیں ہوتی تو ہم غمگین ہوتے ہیں, اس شخص کی طرح دکھی ہوتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ کتنا دکھی ہو رہا ہوگا. جب کوئی جان توبہ کرتی ہے تو آسمان پر خوشی ہوتی ہے, اور اس کے برعکس جو خدا کو رد کر رہا ہو, خدا اس سے کتنا ناخوش ہوتا ہوگا, کتنا اس کا دل ٹوٹتا ہوگا, ہم یہ نہیں سوچتے. تو آئیے ذرا تھوڑی دیر اپنا مشاہدہ کریں, آبزرویشن اپنی کریں, پڑتال کریں, اور صحیح اکاؤنٹیبلٹی کر کے دیکھیں کہ مجھے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے. ہم دعوے کر سکتے ہیں کہ دیکھ, میں خداوند اپنے بچپن سے دعائیں کرتا آ رہا ہوں, اور ہم خداوند کی حضوری میں کہتے ہیں کہ خداوند میں تو اپنے بچپن سے روزے رکھ رہا ہوں, خداوند میں اپنے بچپن سے جو ہے وہ دہیقیاں دے رہا ہوں, ہدیے دے رہا ہوں, زنا نہیں کرتا, حرام کاری نہیں کرتا, بت پرستی نہیں کرتا, خداوند دیکھ چوری نہیں ہے, جھوٹی گواہی کبھی نہیں دی. مگر خداوند نے کہا کہ دیکھ ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے, اور وہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے ہولڈ کرتی ہے, وہ ایک چیز مجھے روک کے رکھ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری چیزیں جو میں کر رہا ہوں شاید اسی ایک کے سبب سے اس کی بھی قدرت ظاہر نہیں ہو رہی, ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جو کچھ میں کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھ میں جس چیز کی سب سے زیادہ محبت ہے وہ مجھے روک رہی ہے اگلی اچیومنٹ سے, اگلی برکات سے, اگلی فیوچر کی جو قدرتیں ہیں انہیں پانے سے روکتی ہیں. مجھے اور آپ کو روکنے والی جو چیز ہے نا, اسے آئیڈنٹیفائی کریں. اس شخص کو شاید یہ آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکتا تھا. He was unable to identify his problems, his shortcomings, and he didn't do it. But when he came to Jesus and presented himself to him and said, Jesus, I want to go to heaven. I want to own it. تو یسوع مسیح نے اسے پریزنٹ کیا, اسے کچھ دیا کہ دیکھ یہ کر لے, کیونکہ تو اپنی نیکیاں گنا رہا ہے, تو میرے فضل پر نگاہ نہیں کر رہا. تو اگر وہ یہ شخص اس کے برعکس یہ کہتا, خداوند دیکھ میں جانتا ہوں کہ 10 احکامات موجود ہیں مگر میں کمزور ہوں, تو میری انگلی پکڑ اور مجھے لے جا, تو نتیجہ کچھ اور ہونا تھا. مگر اس کا توکل جو تھا وہ اپنی بیجا راست بازیوں پر تھا, اور خداوند کو ایسی چیز پسند نہیں ہے, ایسی چیز پسند نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں اسے مایوسی ہے. مجھے اور آپ کو مایوسی اسی لیے ہوتی ہے, ہم بعض اوقات خدا کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں جانے انجانے میں کہ دیکھ میں تو یہ بھی کرتا ہوں. اور آواز آتی ہے, بیٹا ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے, اور وہ جو کمی ہے تجھ پر غالب ہے, وہ جو کمی ہے تیری محبت کا اظہار ہے, وہ جو کمی ہے تیری الفت کا, تیری کنیکٹیوٹی کا مظہر ہے کہ تجھے اس سے کتنا پیار ہے. اور یہیں پر ظاہر ہو جائے گا کہ ایکویٹ کر کے دیکھنا ہے, آپ رکھ کے دیکھیں کہ کون سی چیز بھاری ہوگی. اس نے یسوع مسیح کو رد کر دیا جس کے پیچھے وہ جانا چاہ رہا تھا, اور اس طرح خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے بہت سے لوگ آئے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا, خداوند یسوع مسیح آیا ہے, استاد ربی میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا, اپنا سب کچھ چھوڑ اور میرے پیچھے ہو لے. اس نے کہا کہ میں کیا جاؤں, میں ذرا چاہتا ہوں کہ میرے باپ جو ہے وہ مر گیا, میں اسے دفنانا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے کیا کہا, مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. اور لکھا ہے کہ وہ مایوس ہو کر چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے وہ ریلیشن شپ زیادہ اہم تھا. ہر وہ چیز جو میرے لیے سب سے اہم ہے میرے خدا کی نسبت, سنیے, ہر وہ چیز جو میرے لیے میرے خدا کی نسبت سب سے اہم ہے وہ میرے خدا کو ریپلیس کر دیتی ہے, اور خدا نہیں چاہتا. He doesn't want it to see it happen. इसलिए हर वो चीज जो आपको रोक रही है ना खुदा से मोहब्बत करने से, उसे हटाइए अपनी लाइफ से, उसे सेकेंडरी दर्जा दीजिए। जो आपने अव्वल दर्जा दे रखा है उसे सेकेंडरी दर्जा दीजिए, उसे टर्शरी दर्जा देकर देखें। हम खुदा की सोबत में रह के भी खुदा के नहीं होते। खुदा हमें मुसलसल अपॉर्चुनिटीज देता है और खुदा ने उसे मौका दिया है, ही गेव हिम अ चांस, और वो उसे अवेल करने में क्या रहा, नाकाम रह गया। आपको मालूम है क्या वो खुदा की बाजी में गया? हरगिज़ नहीं। उसने तो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया है। जब बात तोले जाने पे आएगी, बात इम्तहान की आएगी, बात आजमाइश की आएगी, तो बहुत कम निकलेंगे, बहुत कम निकलेंगे। यहूदा इस्करियोती खुदा यीशु मसीह की टीम का हिस्सा था और यीशु मसीह ने उसे चुना था, एंड ही वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हिम ट्रांसफॉर्म्ड। वो उसे ट्रांसफॉर्म करना चाहता था और खुदा यीशु मसीह के साथ साढ़े तीन साल रहने के बावजूद भी वो सारी तालीम सुन रहा था, वो धन दौलत की बाबत भी सुन रहा था, यीशु मसीह से अकीदत की बाबत भी सुन रहा था, वो सुन रहा था पहाड़ी आवाज को भी। उसने हर वो बात सुनी है जो उसे तब्दील कर सकती और खुदा यीशु मसीह के साथ आसमान की बादशाह में दाखिल कर सकती थी, मगर उसे कोई चीज होल्ड कर रही थी और वो क्या था? लालच, ग्रीड जो उसकी थी, और वो रुपए पैसे से मोहब्बत थी। लिखा है उसने कितने में यीशु मसीह के ट्रेड किया? 30 सिक्कों में उसने ट्रेड किया, यीशु मसीह को ट्रेड कर दिया, अपने रिलेशनशिप को ट्रेड कर दिया, अपनी मोहब्बत को, जो यीशु मसीह के से जो उसकी कह लीजिए जाहिरी मोहब्बत थी, उस असल मोहब्बत की खातर ट्रेड कर दिया। हमारी जो जाहिरी मोहब्बतें हैं ना, उनका खुलासा खुल के सामने आ जाएगा। खुदा जाहिर कर देता है, विद द पैसिंग ऑफ टाइम थिंग्स विल बिगन टू सरफेस। और यहां पर यहूदा इस्करियोती की जो मोहब्बत थी वो सरफेस हो गई। उसने 30 सिक्कों की ज्यादा कदर की है यीशु मसीह की निस्बत। उसे वो होल्ड कर रहे थे, यानी उसका लालच जो था वो गालिब आ रहा था। किसका चुनाव करे? यीशु मसीह का चुनाव करे, सिखों का चुनाव करे, यीशु मसीह का चुनाव करे, सिखों से मोहब्बत का चुनाव करे, यानी वो अनेबल था अंडरस्टैंड करने से। साउल को क्या प्यारा था? इख्तियार। साउल को क्या प्यारी थी? इज्जत, पावर, मनी, शोहरत, हुकूमत प्यारी थी, मगर खुदा के साथ ताबेदारी प्यारी नहीं थी, और वो उसे होल्ड कर रही थी। मुझे और आपको जो चीज होल्ड करती है ना, वो मुझे और आपको खा जाएगी। जब बात इम्तहान की आएगी तो वो खा जाएगी, जब बात इम्तहान की आएगी तो वो मुझे लेती चली जाएगी। इसी तरह रिश्तों में भी हम एक दूसरे का इम्तहान लेते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं। जहां जिस चीज की ज्यादा कदर है उसकी निस्बत छोटी चीजों की कुर्बानी वाजबी और सच्ची है। ये बोले हालेलुया। फिर बोलिया, तो साउल ने ताबेदारी को कुर्बान कर दिया अपनी इज्जत की कुर्बानगाह पर, उसने ताबेदारी को कुर्बान कर दिया अपने इख्तियार की कुर्बानगाह पर, उसने खुदा यीशु मसीह से, खुदा बाप से जो ताबेदारी है उसे कुर्बान कर दिया अपने लालच की कुर्बानगाह पर। हम भी ऐसा ही करते हैं बाजुकात। वो चीज उसे होल्ड कर रही थी और वो नाकाम हो गया खुदा के मंसूबों को अंडरस्टैंड करने में, वो नाकाम हो गया खुदा की मर्जी को समझने में। यहूदा नाकाम हुआ, साउल नाकाम हो गया, ये अमीर आदमी नाकाम हो गया, लूत की बीवी नाकाम हो गई। उसे कौन होल्ड कर रहा था? उसका माजी। उसे कौन होल्ड कर रहा था? उसकी सिटी। उसे कौन होल्ड कर रहा था? उसका शहर। और लिखा है वो चलती चलती वापस मुड़ी, हुक्म क्या था? वापिस नहीं जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। बाज़ुकात हम अपने माजी में इतना रहना चाहते हैं, इतना रहना चाहते हैं कि हमें हाल नजर ही नहीं आता। वो होल्ड करता है, और जो चीज आपको होल्ड कर लेगी ना, वो आपसे आपका आने वाला मुस्तकबिल छीन लेगी। पालुस रसूल ने तिमोथियस को खत लिखते हुए, दूसरा बाब चौथे बाब की मेरा ख्याल है, कोई दूसरी तीसरी आयत में पालुस रसूल ने कहा कि वो एक फॉर्मल डिस्कशन कर रहा था खत को कंक्लूड करते हुए। पौलुस रसूल कहता है कि दिमास जो है उसे तो दुनिया की ख्वाहिशों ने हमसे जुदा कर दिया। किससे जुदा कर दिया? पौलुस कह रहा है हमसे यानी मुझसे जुदा कर दिया, मगर किस चीज ने जुदा किया? दुनिया की ख्वाहिश ने, यानी वो चीज उसे होल्ड कर रही थी उस मोहब्बत की फुलफिलमेंट के लिए, के फुलफिलमेंट की कह लीजिए के रास्ता में वो दुनिया की ख्वाहिश जो थी वो रुकावट थी। यानी इस दुनिया में खुदा के साथ आपने मदारज दर्जे लोग चीजें जो है वो उन्हें ऑब्जर्व करने और देखने को कौन सी चीज हमें कहां पर रखती और हमें कहां पर जाना चाहिए, कहां पर होना चाहिए। ये कीमत है आपको बेहतर फ्यूचर के लिए कीमत अदा करना पड़े। आज हम यहां पर मौजूद हैं, हमने पाकिस्तान को छोड़ने का, इंडिया को छोड़ने का, यानी अपने अपने मुल्कों को छोड़ने का क्या किया? फैसला किया। वी वॉन्टेड टू बी हेयर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वाई? बिकॉज वी वॉन्टेड अ गुड फ्यूचर। और हमने कुर्बान क्या किया? अपनी उस धरती को जहां पर हम पैदा हुए थे। तो अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आपको उस बहुत से अच्छे की अचीवमेंट के लिए जो आपको होल्ड कर सकती है उसे कुर्बान करना है। वो आपकी आदत है, वो रुपए पैसे से मोहब्बत हो सकती है, वो बिजनेस से, वो जगहों से, वो लोगों से, वो चीजों से, अशखास से, रिश्तों से। खुदा इम्तहान लेता है और जब वो लेता है तो हर चीज को सरफेस करता है। आमीन। आइए बोले हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। तो मैं और आप यहूदा की तरह, साउल की तरह, इस अमीर आदमी की तरह, लूत की बीवी की तरह अगर नाकाम हो जाएंगे तो कुछ आने वाला हाथ नहीं है। और इसके बरक्स अगर छोड़ने के लिए तैयार हैं इब्राहिम की तरह, इसके बरक्स इब्राहिम की तरह, इब्राहिम से खुदावंद ने क्या कहा? इब्राहिम अपने नातेदारों को छोड़ जो चीज तुझे होल्ड कर सकती है, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपनी जात भूम को छोड़ दे, अपने एरिया को छोड़ दे, अपने इलाका को छोड़ दे। और इब्राहिम ने क्या कहा? यस टू हिम, आई एम गोना डू इट। लिखा उसने अपने तमाम की तमाम धरती को, अपनी जात भूम सब को छोड़ दिया और मुल्के कनान की तरफ चला। यानी आने वाली मनाजिल को पाने के लिए पीछे खुदा डिमांड कर रहा है कि आप पीछे को क्या करो? छोड़ो। और इब्राहिम ने किया जो चीज उसे होल्ड कर सकती थी, उसने उसका इनकार किया, उसने उसे छोड़ दिया। मुझे अगर आने वाली बरकत चाहिए, इसे खुदा की बादशाही चाहिए थी, आपको क्या चाहिए? हमेशा की जिंदगी चाहिए तो आपको पुरानी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। लिखा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और तौबा के लिए मुझे और आपको वो छोड़ना पड़ेगा जो कुछ मैं करता आया हूं, जो खुदा की नजर में ऑफेंसिव है, जो खुदा की नजर में ईवल है, उसे छोड़ना और फिर अगली बरकात को पाना, यही सच्चाई है। और इस अमीर आदमी की तरह अगर तो नाकाम हो जाएंगे तो फिर मायूस होंगे, गमगीन हो जाएंगे। चलिए एक रास्ता डेवलप करते हैं। इब्राहिम की बात हमने की है, एक रास्ता डेवलप करते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम उन चीजों को पालें जो मेरे लिए खुदा ने रखी हुई हैं आने वाले वक्त में। क्योंकि हमें मालूम है हम में से हर एक को कुछ ना कुछ रोकता है, और हर बंदे की कोई आजमाइश है। लेट मी टेल यू वंस अगेन, हर बंदे की कोई आजमाइश है। किसी को खुदा, खुदा ठीक, और इस धरती के लोग, इस धरती का जो खुदा है वो भी, उसकी आजमाइश, किसी की रुपया आजमाइश है, किसी की जिस्मानी ख्वाहिशें आजमाइश हो सकती हैं, किसी के लिए शोहरत आजमाइश हो सकती है, किसी के लिए प्रेज आजमाइश हो सकती है, मेरी को वाह हुए फेरिए, यानी कुछ भी हो सकता है। और जो चीज आपको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है ना, खुदावंद उसकी कुर्बानी चाहेगा, खुदावंद उसकी कुर्बानी चाहेगा। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? अमीर आदमी झुक तो रहा है, दौड़ के यीशु मसीह के पास आ तो रहा है, मगर सरेंडर नहीं कर रहा, सरेंडर नहीं कर रहा, अपने आप को सपुर्द नहीं कर रहा। जब वो अपने आप को सपुर्द करेगा तो जो कुछ उसके पास था उसे वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह की यही डिमांड थी। क्या डिमांड थी? कि जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर? गरीबों को बांट दे, गरीबों को दे दे। ये टेस्ट था, ये इम्तिहान था, ये सरेंडर करना था। नंबर वन चीज जो आपको करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाली बरकतों को पाएं, तो खुदा के हुजूर, खुदा के वास्ते, खुदा के लिए, अपनी जिंदगियों की बेहतरी के लिए मुकम्मल सरेंडर कीजिए। जब ऐसे हालात आ जाएं, ऐसी डिमांड्स आ जाएं, ऐसी चीजों की खुदा आपसे जो है वो कह लीजिए डिमांड कर रहा हो, तो फिर झिझकिए नहीं। अय्यूब के 7 बच्चे थे और किताबे मुकद्दस में लिखा है कि सब कुछ उसका चला गया, खुदा ने उसे पूछा नहीं है कि अय्यूब आई वांट टू टेस्ट यू। उसे बेखबरी में मारा गया, बेखबरी में मारा गया। वो दुआएं कर रहा है, वो कुर्बानियां चढ़ा रहा है, मगर उसे मालूम नहीं है कि आसमानी मुकामों पर उसके बाबत क्या डिस्कशन चल रही है, क्या बातचीत हो रही है, किसके दरमियान, खुदा और अब्लीस के दरमियान डिस्कशन हो रही है, उसे मालूम ही नहीं है। और आपको और मुझे क्या मालूम है कि मेरे और आपके ताल्लुक से क्या बातचीत होती होगी। उसका सब कुछ चला गया, मगर वो उन चीजों से इतना जुड़ा हुआ नहीं था जितना वो खुदा से जुड़ा हुआ था। इसीलिए उसने खुदा के खिलाफ कोई कुफर नहीं भका। उसकी बीवी कह रही थी कि खुदा के खिलाफ कुफर भक। उसके 3 दोस्त आकर उसे उकसाते हैं, उसे झूठा साबित करते हैं, उसे मकार और नाराज साबित करते हैं, मगर वो भी नाकाम है। फिर खुदा आता है, खुदा ने उसकी रास्तबाजी का इम्तिहान लिया और ये कामयाब था। मुझे और आपको जो नंबर वन क्या करना है, सरेंडर करना है मुकम्मल तौर पर। किताब मुकद्दस में रोमियों के नाम पौलुस रसूल का 12वां बाब और उसकी पहली आयत से आप 3-4 आयत पढ़ें तो लिखा हुआ है, अपने जिस्म ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो, अपने जिस्म ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो खुदा को पसंद है, जो खुदा के पसंदीदा है। यानी सॉरी, मेरा ख्याल है सिर्फ कुर्बानी नहीं लिखा, बल्कि लिखा सोखतनी कुर्बानी के लिए। किस कुर्बानी के लिए? अपने जिसमें ऐसी सोखतनी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो खुदा को पसंदीदा और खुदा के लायक है, खुदा को कबूल है वो। तो वो टोटल सरेंडर करना है कि जब आप अपना आप दे देते हैं तो खुदावंद, फिर जब आप अपना आप देते हैं तो खुदावंद भी अपना आप आपको देता है। आमीन। दूसरी बात, आप खुदा की ताकत और कुदरत पर भरोसा करें। जहां आप सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह शख्स सरेंडर कर देता तो फिर उसका भरोसा यीशु मसीह पर होता, उसकी दौलत पर ना होता। वो ये ना सोचता, उसने सोचा होगा यार मैं इतना मिलियनियर हूं, बिलियनियर हूं, इफ आई एम गोना गिव इट अवे तो मेरे पास क्या रह जाएगा। उसका ट्रस्ट जो था, एक तो वो सरेंडर नहीं कर रहा, दूसरे नंबर पर वो यीशु मसीह के ट्रिलियनियर होने पर यकीन नहीं कर रहा। अगर वो मिलियनियर था तो उसे मतलब ही नहीं है कि वो जो उसके सामने खड़ा है वो अरब खरब पता नहीं क्या पति है, वो तो लामहदूद दौलत का मालिक है। आमीन। वो तो उसे ये मालूम ही नहीं था कि जिस शख्स पर मुझे भरोसा करना है और मुकम्मल भरोसा करना है, वो तो पूरी कायनात को ओन करता है और उसे उसके कहे पर कुर्बान करना था। अगर मैं कहूं कि बेटा ये 10 रुपए फेंक दे तो आप कहें लो यही 10 थे, अभी पादरी साहब कहने ने दे दियो, तो हो सकता है पादरी ने तैयार ली 100 अपने हाथ से रखे हो। खुदा ने मेरे और आपके लिए पता नहीं कितनी बरकतें, किताबों में कदम में लिखा है कि अय्यूब को खुदा ने दुगनी बरकत दी, यानी दुगनी बरकत दी है। तो खुदा जब किसी चीज को छोड़ने के लिए कहता है ना, तो वो आपको कंगला नहीं करना चाहता, आपको मुफलिस हाल नहीं करना चाहता, आपको भिखारी नहीं करना चाहता, बल्कि आपको रिच करना चाह रहा होता है। उसके एनरिचिंग पावर जो है वो आपको एनरिच करना चाह रही होता है। और यहां पर आप सरेंडर करें, दूसरी बात उस पर भरोसा करें। और ये शख्स यीशु मसीह पर भरोसा करने में नाकाम रहा है। इसका भरोसा इसकी धन दौलत रुपए पैसे पर था। तीसरी बात, जब मेरी निगाह यीशु मसीह पर लगी रहेगी तो मेरी दौलत पर, मेरी ख्वाहिशों पर, मेरी चीजों पर जो मुझे स्टक करके बैठी हुई है, जो मुझे रोक के बैठी हुई है, उन पर नहीं होगी। और इसकी ये झुका तो यीशु मसीह के कदमों में था, जाहिरी तौर पर तो उसे देख रहा था, मगर ध्यान अंदर की आंखें कहां पर लगी हुई थी? ओए मिलियंस ऑफ मनी आई हैव, और ये कह रहा कि उन्हें कुर्बान करना। निगाह में जाहिरी तौर पर यीशु मसीह और अंदर कौन चल रही है, दूजिया चीजा। भाई इतना सोना होगा, इतना रुपया, जिसे यीशु मसीह मालदार कह रहा होगा, बाइबल कह रही है कि वो बड़ा मालदार था इसलिए चुप करके चला गया, तो वो वाकई मालदार था। हो सकता है आज का इलॉन मस्क हो, है ना, आज का हो सकता है वॉरेन बफे हो। तो फिर उससे अगर किसी चीज से ऐसी चीज मांगी जाएगी किसी से, और वो तो अपनी दौलत देखोगा, भाई मैंने तो हार्ड अर्न्ड मनी है, किसे छोड़ दूं, कौन छोड़ना चाहता है। मगर जब बात भरोसे की आएगी, जब बात सरेंडर करने की आएगी, जब बात खुदा यीशु मसीह की होगी, तो सारी चीजें बेमानी हो जानी है। आमीन। क्यों? क्योंकि यहां इस दुनिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे आए हैं, जिन्होंने इस दुनिया पर हुकूमत की है, मगर क्या हुआ, खाली हाथ ही गए हैं। तो मैं और आप अल्टीमेटली समडे और वन डे और सम हाउ वी विल लीव दिस वर्ल्ड, हमें जाना है, मगर क्या लेकर जाना है, क्या धन दौलत साथ जाएगा, रुपया पैसा साथ जाएगा? इसलिए यीशु मसीह ने कहा आसमान पर अपना खजाना जमा करो, जहां ना कीड़ा लगता है, ना दीमक लगेगा, ना चोरी का डर है, और वहां पर हमें अच्छा खजाना मिलेगा। आमीन। आज आपसे खुदावंद क्या चाहता है, लेट मी कंक्लूड इट। हो सकता है खुदावंद आपसे कह रहा है, बेटा बुरी आदत छोड़ दे, बेटा ये जिससे जिस चीज से तुझे मोहब्बत है ये छोड़ दे, मुझसे मोहब्बत है तो टेस्ट पास कर, क्वालिफाई कर और मेरे पीछे हो ले। आमीन। आइए, जो चीज आपको रोक रही है उसे छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो यहूदा का सा अंजाम होगा, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो सऊल का सा अंजाम होगा, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपके साथ लूत की बीवी का सा अंजाम होगा, अगर नहीं छोड़ेंगे तो इस अमीर आदमी का सा अंजाम होगा। आइए अपने यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने 15वें बाब में कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। If you love me, you will abide in me. अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर चलोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे। और उसके हुक्म क्या थे? उसका हुक्म यह था, वो तो उन हुक्मों की अमीर आदमी बात कर रहा था जो पुराने आदनामा में दिए गए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने रिपीट किया, मगर जब उसने नया हुक्म दिया, उसने कहा कि जा बेटा सब कुछ बेच दे, तो वो उस हुक्म को मानने में नाकाम हो गया। आ जाइए खुदावंद की हजूरी में। अगर आपकी कोई आदत आपसे छूट नहीं रही, अगर आपको किसी ऐसी चीज से मोहब्बत है जो खुदा की मोहब्बत से, जिससे असल मोहब्बत और प्यार होना चाहिए, अगर उससे नहीं है तो फिर नाकामी है, फिर मायूसी है, गमगीनी है। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक। कहने का मतलब था कुछ चीज जो तुझे रोकती है उससे निमट, उसे डील कर। और मैं और आप जब डील करने में नाकाम हो जाते हैं तो खुदावंद फिर हमें मायूस करता है और हम चले जाते हैं मायूसी से। हालेलुया। आइए चंद लम्हों के लिए, अगर आप खड़े हो सकते हैं, चंद लम्हों के लिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चंद लम्हों के लिए अगर आप खड़े हो सकते हैं तो मैं आपको एक चैलेंज दूंगा, और वो चैलेंज मेरी तरफ से नहीं है, खुदावंद की तरफ से है। वो चैलेंज यीशु मसीह ने अमीर आदमी को दिया कि अपने आप को बदल और अपनी मोहब्बत का इम्तिहान ले, अपने आप को तोल और देख तू कहां पर फॉल करता है, और चेक कीजिए क्या इस अमीर आदमी की तरह मेरे सारे दावे धरे के धरे तो नहीं रह जाएंगे, जिस तरह से उसका दावा जो था वो धरे का धरा रह गया कि मैं तो बचपन से तेरे हुक्मों पर अमल करता हूं, यानी वो ये कहना चाहता था कि मैं तेरे हुक्मों पर अमल करता हूं और इसलिए मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। यीशु मसीह ने इसीलिए यूहन्ना 15 में कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो ये मोहब्बत का सबूत है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और उसने जब यीशु मसीह ने जब उसे हुक्म याद दिलाए हैं और फिर एक हुक्म दिया है तो वो नाकाम हो गया। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो बाप यीशु मसीह के नाम से। मैं खुद को और तेरे बच्चों को तेरी हुजूरी में देता हूं मेरे खुदावंद। बाप यीशु मसीह के नाम से वर्टिकल लाइफ चर्च पर तेरी हुजूरी चाहता हूं, तेरा मसा चाहता हूं, तेरी कुदरत चाहता हूं खुदावंद। हर वो चीज जो हमें तुझ में बढ़ने से रोकती है वो कोई भी चीज क्यों नहीं है, गालिब आने का फजल अता फरमा, आगे बढ़ने का फजल अता फरमा, फतेहमंदी का फजल अता फरमा खुदावंद। आसमानी बाप गालिब आने की कुदरत अता फरमा दे। हालेलुया। खुदावंद मेरे भाइयों पर, मेरी बेटियों पर, मेरी बहनों पर, मेरे बच्चों पर तेरा हाथ हो मेरे खुदावंद, सब पर अपनी अपनी कुदरत की निगाह डाल मेरे खुदावंद। जो चीज इन्हें रोक रही है आगे बढ़ने से खुदावंद तू उसे डांट, हेल्प कर मेरे खुदावंद उन तमाम तर मामलात को डील करने में, फजल कर मेरे खुदावंद। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। आइए तशरीफ रखिए प्लीज। हर वो चीज जो मुझे और आपको रोकती है हमारी बरकतों को पाने के लिए, उसके खिलाफ जंग का ऐलान करें, आमीन। उसके खिलाफ जंग का ऐलान करें। जंग में ज़र्बें आ सकती हैं, चोटें आ सकती हैं, जाहिरी और बातनी नुकसानात हो सकते हैं, मगर वो उस फजल और उस दौलत से बड़े नहीं होंगे जो हम पर जाहिर होने को है, आमीन। वक्त है जी अपने हदिये, अपनी दाई यकियां खुदावंद की हुजूरी में गुजराने। जो कुछ खुदावंद ने आपको दिया हुआ है दयानदारी से उसके हुजूर में वापस लौटाइए। आप जेल कर सकते हैं, आप चेक बना सकते हैं, आप कैश की शक्ल में ऑफरिंग डाल सकते हैं। सोहेल भाई से दरख्वास्त है कि प्लीज हदिया उठाने में मदद कीजिएगा। और सैमसन प्लीज।
फिजा में देखता मैं उसके हाथों का कमाल, फिजा में देखता मैं उसके हाथों का कमाल,
यस लॉर्ड।
करें ये आसमां जाहिर खुदावंद का जला। करें ये आसमां जाहिर खुदावंद का जलाल,
आएंगे मिलके गाएंगे।
करें आसमां जाहिर खुदावंद का जलाल, करें ये आसमां जाहिर खुदावंद का जलाल। फिजा में देखता मैं उसके हाथों का कमाल, फिजा में देखता मैं उसके हाथों का कमाल, करें ये आसमां जाहिर खुदावंद का कमाल, करें ये आसमां जाहिर खुदावंद का जलाल, करें बातें यो दिन से दिन सिखाएं रात को भी रात, करें बातें यो दिन से दिन सिखाएं रात को भी रात, तेरे अहकाम जो इनको दिए तूने तेरी हर बात, तेरे अहकाम जो इनको दिए तूने तेरी हर बात, करें ये आसमां जाहिर खुदावंद का जलाल, करें ये आसमां जाहिर खुदावंद का जलाल, खुदावंद का जलाल, खुदावंद का जलाल।
आमीन। एक नारा लगाएंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की।
आमीन। जय मसीह की जी।